मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 8 जुलाई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं राहुल जाटो जो गंज बासौदा मध्य प्रदेश से हैं और प्रवीण कुमार आर्य जो दिल्ली से हैं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं हमारे जो राजकोष की वर्तमान स्थिति है इसके बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। खासकर मैं जिन घटनाओं की चर्चा करने जा रहा हूं आज उसकी एक थोड़ी सी अलग तरह की विशेषता है और विशेषता यह है कि इनमें से ज्यादातर घटनाओं की चर्चा आपको न्यूज में सुनने को नहीं मिली होगी। मैं इस बात को आपके सामने क्यों रख रहा हूं दोस्तों, इस बात को मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि अगर आप के में से किसी के दिमाग में यह तथ्य हो कि न्यूज सुन लेना ही पर्याप्त है तो इस धारणा से आपको मुक्ति पानी होगी, या इसके ठीक विपरीत अगर आप में से किसी के दिमाग में यह धारणा बनी हुई हो कि न्यूज सुनने की जरूरत नहीं है, अखबार में तो चीजें मिल ही जाती हैं, अखबार पढ़ लेना ही पर्याप्त होगा, तो मुझे लगता है कि यह भी धारणा अधूरी ही है। आपको दोनों का साथ लेकर चलना पड़ेगा। और देखिए, अगर आप न्यूज में सुनकर के अखबार में पढ़ते हैं तो अनजाने में ही आप उसे रिवाइज कर रहे होते हैं और आप इस बात से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, आपके पास अनुभव है कि जिस बात को आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे वे बातें उतनी ही ज्यादा आपके दिमाग में लंबे समय तक मौजूद रहेंगी। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आफ्टर ऑल आपको कुछ तो लिख करके आना ही है, दिमाग में मौजूद रहनी चाहिए बातें। तो यहां जो मैं कहना चाह रहा हूं वह यह कि आपको न्यूज और अखबार दोनों को समानांतर रूप से लेकर चलना है। दोस्तों, आज के न्यूज के तहत एक न्यूज आपने अखबारों में पढ़ी होगी जो हांगकांग की चर्चा हम लोगों ने की थी, हांगकांग के लिए जो चीन ने अपना जो एक कानून राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया है उसका काफी विरोध हो रहा है। हांगकांग के लोग तो कर ही रहे हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका विरोध हो रहा है। इस विरोध में दो बातें नई ऐड हुई हैं। पहला तो यह कि जो गूगल है, फेसबुक है और ट्विटर है, इन तीनों ने हांगकांग की जो मांग थी कि भाई ये जो आप अपने जो डेटा है वो अपने यूजर्स को देना बंद कर दीजिए, उन्होंने बिल्कुल देना बंद कर दिया है। एक बहुत बड़ी बात है, इन कंपनियों ने हांगकांग की इस मांग को स्वीकार किया, वहां की जो टेक कंपनियां थी। और इसके बाद टिकटॉक का नाम आप जानते हैं जो चीन की कंपनी है, चीन की कंपनी ने भी कहा है कि वह वहां हांगकांग से वो अपने ऐप स्टोर हटा लेगा, हांगकांग से हटा लेगा। अब आप देखिए कि कैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी, यहां तक कि उसके यहां की अपने यहां की कंपनी भी, जो चीन की सरकार ने जो कानून बनाया है उसका कहीं ना कहीं विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये केवल सूचना मात्र के रूप में इस घटना को अभी आप लीजिए क्योंकि हांगकांग की घटना है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखते हैं कि भारत इस पूरे के पूरे सीन में कहां आता है। लेकिन चूंकि ये चीन से जुड़ी हुई घटना है और चीन हमारे सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए थोड़ा हांगकांग के बारे में भी हमें जानते रहना होगा। दूसरी जो खबर है फ्रेंड्स, वो खबर है कुवैत को लेकर। कुवैत की संसद में अभी एक बिल पेश किया गया है और उस बिल में इस बात का प्रोविजन है कि कुवैत की जो टोटल आबादी है उस आबादी का केवल जो 15% जो जनसंख्या है वो प्रवासी हो सकते हैं। और अगर यह बिल पारित हो गया, जिसके पारित होने की पूरी संभावना है, तो यह माना जा रहा है कि वहां रहने वाले 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा, 8 लाख भारतीय। देखिए, हो क्या रहा है कि ये जो मध्य एशिया के जो देश हैं, ओमान वगैरह ने इससे पहले इस तरह के काम किए हैं, इस तरह के बिल पारित किए हैं, कानून बनाए हैं, तो हो क्या रहा है कि किसी समय में ये जो देश थे, जो खाड़ी देश थे, इनके पास तेल से संबंधित बहुत बड़ा खजाना था, है ना, पेट्रोलियम पदार्थ, धीरे धीरे पेट्रोलियम पदार्थ दूसरे जगह भी मिलते चले जा रहे हैं, ऊर्जा के दूसरे नवीन साधन आते चले जा रहे हैं। आप देखिए कि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी घट गई हैं, तो इनकी अर्थव्यवस्था पर भी एक जबरदस्त दबाव आ रहा है। अब इस दबाव का सामना करने के लिए अब ज्यादातर देशों को यही उपाय दिखाई देता है कि बाहर से जो लोग आए हुए हैं उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाए, ताकि जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं हमारे अपने ही नागरिकों के लिए वो पर्याप्त हो सके। उसी का एक आप कह लीजिए कि निर्णय कुवैत ने कुछ इस तरीके का लिया है, वही बातें यहां भी दिखाई दे रही हैं। आप इस बात को भी जानते हैं कि जो हमारे मध्य एशिया के देश है कुवैत और सऊदी अरब, इनमें केरल से बहुत ज्यादा लोग गए हुए हैं, केरल से तो सबसे ज्यादा। और जो आज केरल एक हमारे एक रिचेस्ट स्टेट में से एक है, जो केरल की अर्थव्यवस्था है वो प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजे गए धन पर बहुत ज्यादा निर्भर भी करती है। और अभी अभी केरल में लगभग 1.5 लाख लोग वापस आ चुके हैं और उनको जॉब प्रोवाइड करने के लिए बकायदे केरल सरकार ने ड्रीम केरल नाम से एक परियोजना भी शुरू की है कि ताकि लोगों को जॉब मिल सके। अब इतने सारे लोग जब आएंगे केरल में और तो भारत के दूसरे भी देशों में, तो खासकर केरल में, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी एक दबाव तो पड़ेगा, तो ये भी आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तीसरी जो घटना है दोस्तों वो अमेरिका को लेकर है। अमेरिका ने एक बहुत ही विचित्र सा आदेश जारी किया है और उसमें यह कहा गया है कि अमेरिका में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अब उन्हें सभी को ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी होगी। अगर वो ऑनलाइन क्लासेस करेंगे तो उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ेगा, और यहां तक कि वो अभी अमेरिका में रह रहे हैं और अगर वो ऑफलाइन क्लासेस में नहीं जाते, यानी कि सीधे सीधे अब वो कक्षाओं में जाएं, और अगर नहीं जाते तो उनको फिर जबरदस्ती यहां से निकाला जाएगा, यानी कि जो उनका वीजा वगैरह है वो रद्द कर दिया जाएगा। सोचिए अब भारतीय जो छात्र हैं, सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा भारतीय छात्र हैं, वो इसको लेकर के बहुत ही जबरदस्त रूप से परेशान हैं, क्योंकि वहां के बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि साल भर तक अब हमारी कक्षाएं नहीं लगेंगी, खास कोरोना के चलते, और क्लासेस होंगी, सेमेस्टर्स होंगे, एग्जामिनेशंस होंगे और सारी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन होगी। तो बहुत से जो अमेरिकी छात्र थे वो भारत भी वापस आ चुके हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो ठीक है, हम भारत में जाकर के पढ़ाई कर लेंगे। और बहुत से हमारे जो भारतीय छात्र हैं वो अमेरिका में ही हैं, वो अपने कमरों में रह रहे हैं जहां भी उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, और वहां से वो अपनी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि आप ऑफलाइन क्लासेस कीजिए। यहां तक कहा गया है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी जैसे हार्वर्ड ने, मान लीजिए हार्वर्ड ने कह दिया कि वो साल भर तक ऑफलाइन क्लासेस ही नहीं चलाएगी, ऑनलाइन क्लासेस चलाएगी, और उसमें किसी ने एडमिशन लिया हुआ है, तो सरकार ने कहा है, सरकार का कहना है कि आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए जहां ऑफलाइन क्लासेस चल रही, वहां आप जाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, अमेरिका छोड़ दीजिए। सोच करके देखिए कि कितना बड़ा धर्म संकट इस आदेश ने पैदा कर दिया है। खुद अमेरिका के लोगों ने इसकी बहुत जबरदस्त रूप से आलोचना की है, शैक्षणिक संस्थाओं ने भी आलोचना की है, क्योंकि अमेरिका भी कोरोना से कितना त्रस्त है। आप जानते हैं 50 राज्य हैं अमेरिका में जिसमें 40 बुरी तरह से कोरोना से ग्रस्त हैं। अब वहां कैसे ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, और अगर ऑफलाइन क्लासेस वहां शुरू की जाती हैं तो सोच करके देखिए कि बाहर से गए हुए विद्यार्थी कितने बड़े रिस्क में अपने आप को डाल रहे हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा संकट अमेरिका के इस आदेश से उठ खड़ा हुआ है, और चूंकि भारत का इससे सीधा सीधा संबंध है तो भारत भी इसको लेकर के चिंतित है, और हमारे जो वहाँ एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है कि इसके बारे में वो अमेरिकी प्रशासन से बात करेंगे। लेट अस सी कि क्या होता है। और वहाँ के जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो इस बात को लेकर के परेशान हैं, क्योंकि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं विदेशों से जो पढ़ने के लिए आते हैं, यानी कि दूसरे देशों से जो पढ़ने के लिए आते हैं, उससे उनको हर साल लगभग 3 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं, 3 लाख करोड़ रुपए। और अगर अमेरिका की ऐसी ही नीतियाँ रही तो डेफिनेटली इसका प्रभाव भविष्य पर भी पड़ेगा। दोस्तों एक और खबर है जो हरियाणा को लेकर के है, और मैं आज टाइम्स ऑफ इंडिया में जो एडिटोरियल कमेंट्स आया हुआ है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। समय को देखते हुए उसकी चर्चा मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूं, कल हो सका तो मैं इस पर चर्चा करूंगा। घटना यह है कि हरियाणा सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि वहां जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके जो 75% जो जॉब हैं वो वहां के स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व किए जाएंगे। इसके लिए बाकायदे ऑर्डिनेंस की व्यवस्था की गई है, इस पर हम लोग कल थोड़ी सी बात करेंगे। आज अब मुख्य विषय को देख लेते हैं जो राजकोषीय जो हमारी वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के है। इनफैक्ट ये एक तरह से प्रैक्टिकल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों कोरोना के बाद से जो सरकार की स्थिति है और खासकर उसके अकाउंट की आप कह लीजिए उसके बारे में आप थोड़ा सा विचार कीजिए। देखिए जब हम राजकोष की बात करते हैं तो राजकोष का मतलब क्या हुआ? राज्य का भंडार, खजाना, यानी कि उसके पास जो पैसा, उसका जो पर्स है या उसका जो अकाउंट है उसकी क्या स्थिति है। राज्य जो हम यहां बात करें उसका मतलब देश से ही है। देश में पैसा कहां से आता है आप अपने दिमाग में लेकर के आइए कि राष्ट्र को या सरकार को पैसा कहां कहां से मिलता है, और जब पैसा मिलता है तो सरकार उसे खर्च भी करती है, तो सरकार कहां कहां उसे खर्च कर रही है, सरकार करती है। इसके बाद आप पिछले जो 2-3 महीने का जो समय बीता है, खासकर कोरोना के समय को लेकर के मैं खास बात करना चाह रहा हूं, तो इन 3 महीनों में सरकार के इस राजकोष की स्थिति क्या रही है। देखिए मैं आपको राजकोष की इस स्थिति के ऊपर एक आर्टिकल आज प्रोवाइड कर रहा हूं बिजनेस स्टैंडर्ड का, लेकिन मेरी सलाह है कि इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले अगर आपने इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है या थोड़ी बहुत आप समझ रखते हैं तो बेहतर होगा कि पहले आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। और दिमाग के इस्तेमाल के लिए ही मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं कि आपको ये सोचना है 3 महीने की स्थितियों के बारे में कि सरकार के पास जहां जहां से पैसा आता था उनकी स्थिति क्या रही, कहां से पैसा ज्यादा आया, कहां से पैसा कम आया, तो टोटल मिलाकर के आने की जो टोटल रहा योग रहा, धन आने का जो योग रहा वो कितना रहा। इसके बाद फिर आप सोचिए कि खर्चा सरकार ने कहां कहां किया, कहां कहां उसे खर्च करना पड़ रहा है, कहां कहां खर्च सरकार कर रही है, पड़ रहा है का मतलब है कि अभी आप देखिए कि कोरोना के कारण उसे कहीं अधिक खर्च करना पड़ रहा है, कहीं हो सकता है कि सरकार को कम भी खर्च करना पड़ रहा हो। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि कोरोना के कारण सरकार के खर्च बढ़े ही हैं। हाँ ये बात अलग हो सकती है कि टोटल खर्च बढ़ गए हों, लेकिन कोई सेक्टर ऐसा भी तो हो सकता है जहां सरकार का खर्च घट गया हो, तो उन पर आप थोड़े से गंभीरता से विचार कीजिएगा। और गंभीरता से विचार करने के बाद फिर आप अपनी ओर से निष्कर्ष निकालिएगा कि ऐसी स्थिति में सरकार की जो राजकोषीय स्थिति होगी, यानी कि जो टोटल उसका अकाउंट होगा, वो पहले की तुलना में बेहतर होगा या कम होगा। बस केवल यह निष्कर्ष निकालिए, और यह निष्कर्ष निकालने के बाद फिर आप बिजनेस स्टैंडर्ड का यह आर्टिकल पढ़िएगा और फिर अपने को रिव्यू कीजिएगा कि आप कितने सही तरीके से सोच पाए थे, नहीं सोच पाए थे। और केवल यही बात नहीं कि सोच पाए थे या नहीं सोच पाए थे, आपको यहां यह भी देखना होगा कि अगर नहीं सोच पाए थे तो कहां आपकी मिसिंग रही, क्यों नहीं सोच पाए। तो इस तरह से सेल्फ इवेल्युएशन भी करते रहना मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, उन्हीं में से एक मित्र हैं शालू पांडे वाराणसी उत्तर प्रदेश से, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।